ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 महाराज प्रियव्रत का चरित्र। सो डू वी रिसाइट दीज वर्सेस और दीज आर नॉट रिसाइटेबल? कैन यू रीड आउट? ओके, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। मनुरूपी परेणैव प्रतिसन्धत् मनोरथः सुऋषिवर अनुमतेन आत्मज अखिलधरमण्डल स्थितिम् अतिगुप्तय आस्थाप्य स्वयं इति विषम विषय विषजलाशयाशया उपरराम। शब्दशः भाषान्तर मनुः स्वयंभू मनु अपि भी परेण ब्रह्मा द्वारा एवं इस प्रकार प्रतिसंधित पूर्ण हुआ मनरथ अपना मनोरथ सुर ऋषि वर महर्षि नारद की अनुमतेन अनुमति से आत्मजम अपने पुत्र को अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड का धर्मंडल लोकों का स्थिति पालन गुप्तये रक्षा हेतु आस्थाप्य स्थापित करके स्वयं स्वयं अतिविषम अत्यंत भयावने विषय सांसारिक प्रपंच विष विष का जल आशय समुद्र आशायः कामनाओं से उपरराम निवृत्ति प्राप्त की। भाषांतर तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। भाषांतर इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामना के अति दुस्तर तथा विषमय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। तात्पर्य स्वयंभू मनु एक प्रकार से निराश ही थे क्योंकि नारद जैसे विभूति ने उनके पुत्र प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम न स्वीकार करने का उपदेश दे रखा था। अब वे अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने बीच में पढ़कर उनके पुत्र प्रियव्रत को राज्याभार संभालने के लिए राजी कर लिया था। भगवद्गीता से हमें यह जानकारी मिलती है कि वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र थे और उनके पुत्र महाराज इक्ष्वाकु से ने इस पृथ्वीलोक पर शासन किया। किंतु ऐसा लगता है कि स्वयंभू मनु पर समस्त ब्रह्मांड के पालन और रक्षा करने का भार था। धरामंडल का अर्थ है लोक है, उदाहरणार्थ यह पृथ्वी धरामंडल कहलाती है, किंतु अखिल का अर्थ संपूर्ण अथवा विश्वव्यापी है। अतः यह समझ पाना कठिन है कि महाराज प्रियव्रत कहाँ स्थित थे, किंतु इस वर्णन से यह निश्चित रूप से प्रकट होता है कि उनका पद वैवस्वत मनु से बड़ा था, क्योंकि उन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त लोगों का भार सौंपा गया था। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के सभी लोगों के राज्याभार से निवृत्ति मिलने पर अत्यधिक संतोष हुआ। आजकल राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति या ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने की आकांक्षा से जनमत प्राप्त करने हेतु अपने अपने आदमी नियुक्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, जो द्वार द्वार जाकर उनका प्रचार करे। इसके विपरीत यहाँ हम पाते हैं कि समस्त संसार का राज्य भार संभालने के लिए प्रियव्रत को ब्रह्मा द्वारा मनाया जाना पड़ा। इसी प्रकार उनके दस स्वयंभू मानु ने विश्व का राज्य अपने पुत्र को सौंपते हुए अत्यंत शांति महसूस की। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में राजा था उनके राज्य अधिकारी इंद्रिय भोग के लिए इन पदों को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे महान राजा राजऋषि कहलाते थे और प्रजा की भलाई के लिए राज्य का पालन और संरक्षण करने के लिए शासन करते थे। प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि किस प्रकार आदर्श राजा निस्वार्थ भाव से राज्य का संचालन करते थे और अपने को भौतिक आसक्तियों से कुलभूषित होने से दूर रखते थे। यहाँ पर विषयों की तुलना विश्व सागर से की गई है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने एक गीत में इन्हें ऐसा ही बताया है। संसार विशानले दीवानिशी ही अज्वले जुड़ाई ते न कोई न उपाय, मेरे हृदय संसार की अग्नि में सदा जलता रहता है और उससे उबरने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिले के ने पाया। इसकी एकमात्र औषधि हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, जो गोलोक वृंदावन से लाया गया है। मैं कितना अभागा हूँ कि उसके लिए मुझ में तनिक भी आकर्षण नहीं है। मनु ने ईश्वर के चरण कमल की शरण चाही थी, इसलिए उनके पुत्र प्रियव्रत के राज्य संभाल लेने पर वे अत्यंत शांत हुए। यही वैदिक सभ्यता की परंपरा है। जीवन के अंतिम समय प्रत्येक व्यक्ति को विषय से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में पूर्णतया लगना चाहिए। सुरषिवर अनुमते न शब्द भी सार्थक है। मनु ने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को राज्य दे दिया। इसका विशेष उल्लेख यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि नारद चाहते थे कि प्रियव्रत समस्त विषयों से मुक्त रहे, किंतु जब ब्रह्मा जी तथा मनु की प्रार्थना पर प्रियव्रत ने ब्रह्मांड का राज्यभार स्वीकार कर लिया तो नारद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वृंदावन के इस परम पवित्र धाम में आप सब ब्रजवासी हैं, तो आप सबका मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि कुछ भगवान के इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पे कुछ चर्चा कर सकूँ। भागवतम के इस विभाग में, वहाँ तत्व बताया जा रहा है जो कि भागवतम के पार्श्वभूमि समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भागवत ग्रंथ इसलिए उसका बताया गया था कि परीक्षित महाराज को जब उनकी मृत्यु के लिए 7 ही दिन बचे थे तो उनको कैसे तस्माद एके न मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, हमेशा कैसे भगवान का स्मरण कर सके, उसका मार्गदर्शन देने के लिए बताया जा रहा था। तो अभी यह जो 5वां स्कंध है, ये 1ला अध्याय है, इसमें वास्तव में भागवत में क्या हो रहा है। हम जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो कैसे प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी अपनी उनकी किताब है ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण के मार्ग पे, उसमें लिखते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा बट ऑल नॉलेज डज नॉट बिगिन फ्रॉम कृष्णा। बताते हैं कि सब ज्ञान कृष्ण भगवान से आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि सबके सबको जो ज्ञान देता हूँ मैं देता हूँ। तो कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी जो बुद्धि है वो भगवान से आ रही है। सब ज्ञान भगवान से आता है, पर ज्ञान जो शुरुआत होती है भगवान से नहीं होती है। मतलब क्या है कि साधारणतः व्यक्ति है अचानक एक दिन उठता सोचता रहे कि दुनिया कहाँ से आई, भगवान से आई क्या, सोचते नहीं। हम क्या दुनिया के बारे में जांच करते हैं, और जब दुनिया के बारे में जांच करते हैं तो उस समय विचार करते हैं, अच्छा ये मैं ऊपर आसमान में तारे देख रहा हूँ, यहाँ पर ज़मीन पर मैं, यहाँ पे इतने सारे पहाड़ देखता हूँ, नदी देखता हूँ, ये सब आया कहाँ से। सबसे पहले हम हमारे आजू बाजू की दुनिया को देखते हैं और दुनिया को देखकर फिर दुनिया का स्रोत क्या है सोचते हैं, या फिर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है तो फिर अगर हम एक योजना बनाते हैं कि मुझे ऐसे कुछ करना है और कुछ और हो जाता है तो फिर ये क्यों हुआ, क्या मेरे परे भी इस दुनिया में कोई नियंत्रक है और वो कौन है। तो इस तरह से इस दुनिया से ही हमारे विचार भगवान की ओर जाते हैं, अपने आप भगवान की ओर विचार नहीं जाते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले लंदन में था, वहाँ पे प्रवचन दे रहा था कुछ, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइंस और स्पिरिचुअलिटी पे, ये विज्ञान और आध्यात्म, इस पर प्रवचन देने के लिए बुलाया गया था। तो जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में वही पेड़ है जिसके नीचे एक विख्यात वैज्ञानिक आइज़ैक न्यूटन जो बैठे थे वही उनके सिर पे ऐसे कहा गया कि एक सेब गिर गया, और जब सेब गिर गया तो वो सोचने लगे सेब क्यों गिरा यहाँ पे, और फिर उससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसका खोज की। तो जैसे ये वृंदावन में अलग अलग जगह कृष्ण भक्तों के लिए तीर्थयात्रा की स्थली होती है, तो वो जो पेड़ है वो वैज्ञानिकों के लिए तीर्थयात्रा की स्थली होती है। जो भी वैज्ञानिक लोग विज्ञान का पढ़ाई करना चाहते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, विचार करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से न्यूटन ने इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता से ऐसी आध्यात्म वैज्ञानिक प्रगति की, वैसे हम भी वैज्ञानिक प्रगति करना चाहते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो सोच रहा था किस तरह से अभी ये सेब किसी के सिर पे गिरना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऊपर पेड़ से नीचे गिरना सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों ने सेब गिरते हुए देखा हुआ है। मान लीजिए अगर न्यूटन की जगह पे वहाँ पे कोई बंदर बैठा होता तो बंदर क्या करता, वो सेब उठा लेता था, खा लेता और चले जाता था। अधिकांश मानव भी वही करते थे, पर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने विचार किया कि ये फल क्यों गिरा, किसके कारण गिरा ये फल, और फिर उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम उससे निकाला। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये कोई चीज़ दृश्य है, हमें जो दिखती है, क्या दिखता है, अरे ये फल गिर गया, तो दृश्य से उसने एक अदृश्य तत्व का प्रस्तावना की, क्या गुरुत्वाकर्षण जो है हमें दिखता नहीं है। अगर ये ग्लास का ढक्कन है, मैं इसको नीचे छोड़ देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं अभी, पर अगर छोड़ देता हूँ इसको तो नीचे गिर जाता है, तो मुझे क्या दिखता है, ये गिरते हुए दिखेगा, पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है ये दिखती नहीं है मुझे। पर ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को अगर मैं समझता हूँ तो फिर ये ऐसे क्यों गिरता है मुझे समझता है। सो कभी कभी लोग कहते हैं जो दिखता है मैं उस पर सिर्फ विश्वास करता हूँ, जो अदृश्य भगवान आध्यात्मिक जगत इस पर मैं विश्वास नहीं करता। पर विज्ञान में प्रगति कैसे होती है, साइंस पोस्टुलेट्स द इनविजिबल टू एक्सप्लेन द विजिबल। जो हमें दिखता नहीं दिखता है वह समझाने के लिए विज्ञान क्या करता है, वो जो अदृश्य है उसकी प्रस्तावना करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखता नहीं है, पर जो अदृश्य है वो उससे, वास्तव में जो अदृश्य है वो दृश्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदृश्य से जो दृश्य है वह कैसे कार्य करता है वो समझ में आता है। तो यह जो यह हर ज्ञान के विकास में हमें यह तत्व मिलता है कि हमें जो दृश्य है वो समझने के लिए जो अदृश्य है उसकी ओर जाना है। और विज्ञान तो भौतिक ज्ञान है पर उसमें भी ज़रूरी है, तो आध्यात्मिक ज्ञान में तो कितना और ज़रूरी है। तो भागवतम का भी यही तत्व है, हमारे पास सामने दृश्य जगत है, तो अभी ये दृश्य जगत कैसे चल रहा है तो वह समझने के लिए इस दृश्य जगत पे हम चिंतन करते हैं, तो हम समझते हैं कि इसको चलाने वाला कुछ और होना चाहिए। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, कि भगवान कहते हैं कि मेरे अधीनता में ये जगत चल रहा है। तो अभी अध्यक्ष जो है तो उसका मतलब क्या है कि वह मेरे निरीक्षण में, उपद्रष्टा अनुमंता च, 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ऊपर से मैं चल रहा है। भगवान हमको इस दुनिया में दिखते नहीं हैं पर ये दुनिया कैसे चलती है यह समझाने के लिए भगवान बड़े ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, मैं कुछ समय पहले मैं अमेरिका में था तो वहाँ पर एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर लगता है तो वैसे शरीर को चलाने के लिए आत्मा लगती है। तो वो विद्यार्थी पूछ रहा था कि अभी गूगल ने ड्राइवरलेस कार बना दिए है, अभी ऐसे कार आ गए जिनको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ये उदाहरण का क्या फ़ायदा है। तो अगर कार ड्राइवर के बिना चल सकता है तो क्या शरीर भी आत्मा के बिना चल सकता है क्या। तो अभी मैं बता रहा था कि कार जो है वो ड्राइवर के बिना चल रहा है सिर्फ ऐसे हमको लगता है। जो ड्राइवर वहाँ पे कार में बैठा हो या ना बैठा हो, ड्राइवर की जो बुद्धिमत्ता है वह अनेक ड्राइवरों की जो बुद्धिमत्ता है उसको एक कंप्यूटर में डाला है और वो कंप्यूटर वो कार को चला रहा है। तो मतलब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार को चला सकता है, कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कार चला सकता है। कभी कभी कोई हमारे घर में आता है तो हम दरवाज़ा खोलने जाएंगे, कोई रईस व्यक्ति है जिसका बड़ा उसके घर में बड़ा तंत्र ज्ञान है तो क्या होता है, उनका दरवाज़ा होता है वो अपने सिक्योरिटी कैमरा से देखते कौन आया है और पहचाना व्यक्ति आता है तो दूर से ही बटन से दरवाज़ा खोल देते हैं। जब दरवाज़ा खुल जाएगा हमको कोई दिखेगा नहीं, दरवाज़ा खुल गया कोई नहीं है हमें, पर क्या है कोई दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं है। वो दरवाज़ा खुल गया है मतलब क्या है, किसी ने उस दरवाजे को खोला है। तो जब हम कोई चीज़ ऑटोमेटिकली हो गई है बोलते तो ऑटोमेटिकली का मतलब यही है सिर्फ कोई दिख नहीं रहा है पर कोई ज़रूर नियंत्रण में है। तो भागवतम का भाव क्या है, पहले स्कंद से शुरू करते हैं तो दूसरे स्कंद में विराट रूप का वर्णन है, तीसरे स्कंद में सांख्य का वर्णन है और पांचवें स्कंद में जो ब्रह्मांड है उसका वर्णन है। इन सब का उद्देश्य क्या है कि हम ये दुनिया को देखते हैं, दुनिया पे चिंतन करते हैं तो इसके परे क्या है उसके बारे में हमारा विचार जाए। और विचार कैसे जाता है, साधारणतया जब हम इस दुनिया में कार्य कर रहे होते हैं तो हम दुनिया के कार्यों में ही फंसे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, ये भोग करना है, ये प्राप्त करना है, यहाँ जाना है, ये देखना है। इस तरह से हम भौतिक जगत में, भौतिक चेतना में ही लगे रहते हैं। पर ये दुनिया का नियम है कि सबको इस दुनिया में दुख भुगतना पड़ता है, और जब दुख आता है तो उसका उद्देश्य क्या है। दुख का जो अलग प्रकार से दुख आते हैं तो फिर हमें उससे विचार करना पड़ता है, ये क्यों आया मेरे जीवन में। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उन्होंने अमेरिका में रथ यात्रा चालू की थी, तो कई बार वो अधिकांश लोग जो इस्कॉन में पहले आए थे वो हिप्पी थे। अब ये हिप्पी मतलब क्या थे, ये बहुत अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा समय था जब अमेरिका युवक जो थे उनके पास भौतिक भोग की सारी सामग्री थी। 1940 में जो महायुद्ध हुआ उसमें अमेरिका जीत गए, और क्योंकि अमेरिका में युद्ध डायरेक्टली नहीं हुआ था, अधिकांश युद्ध यूरोप, अफ्रीका, एशिया में हुआ था, तो अमेरिका को नुकसान कुछ नहीं हुआ पर फ़ायदा बहुत हुआ। अमेरिका ने बाकी सब देशों को शस्त्र बेचे तो उनको पैसा बहुत मिला। तो उसके कारण उस पीढ़ी के जो बच्चे थे वो बचपन से बहुत रईस थे, उनको भौतिक सुख, भौतिक सुविधा, भौतिक ऐशो आराम प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा था, तो बचपन से ही सब कुछ था। तो उनको ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ है नहीं, मुझे कुछ और जीवन में चाहिए, और वो और क्या है वह ढूंढने के लिए वह खोज करने लग गए। तो उनमें से कहीं एक लोग ड्रग्स में फंस गए, उनको वो लगा कि अब ड्रग्स लोगे तो आप क्या हो गए, आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी। पर अधिकांश लोग क्या हो गए थे, अब भौतिकवादी जीवन से हताश हो गए थे, तो इसमें कुछ है ही नहीं, इतना भोग, इतना मेहनत करते हैं, इतना भोग करते हैं, पर क्या है, थोड़ा सा सुख है, क्या है इसमें इतना। तो यह सोचकर वो कुछ और की खोज में लग गए थे। तो अधिकांश अमेरिकन लोग जो थे वो बड़े विचलित हो गए, ये क्या है, हमारे युवक ये नौकरी नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, ये कुछ संगीत गाते हैं, ये कुछ ड्रग्स लेते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उनको फ्रस्ट्रेटेड लोग कहते थे, फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन कहा करते, ये पीढ़ी है पूरी ये हताश हो गई है, निराश हो गई है। तो प्रभुपाद जी ऐसे हिप्पी लोगों को प्रवचन दे रहे थे, बोलते थे कि ये आप लोगों को अमेरिकन लोग फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं, वो आपकी सराहना नहीं करते, पर मैं आपकी सराहना करता हूं। और प्रभुपाद जी बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, वो कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू बी फ्रस्ट्रेटेड, मानव जीवन का उद्देश्य है कि फ्रस्ट्रेट हो जाना, हताश हो जाना। बोले क्यों, अब प्रभुपाद जी इसको जोड़ते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। तो अभी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, और रामानुजाचार्य उनके श्री भाष्य में जो इसका भाष्य लिखते हैं वो 100 पेज इसका भाष्य उनका, पर किसी आचार्य ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का ऐसा भाष्य नहीं दिया है कि क्या जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप कुछ और सोचोगे, इसीलिए इस दुनिया में हताश हो जाना अच्छा है। जब हताश हो जाते हैं भौतिक स्तर पे तो फिर हम इस भौतिक स्तर के परे और कुछ है क्या इसके बारे में विचार करते हैं। अगर भौतिक स्तर पर ही हम बहुत आशावादी रह गए तो फिर क्या होगा, इस भौतिक जगत के परे और क्या है उसके बारे में जांच क्यों करेंगे। तो इसलिए भौतिक जगत में जब दुख आते हैं तो कई बार क्या होता है, हम वो दुख कहाँ से आया वो देखते हैं, इसने ऐसे किया इसके लिए समस्या हो गई, ये ऐसे हुआ इसके लिए समस्या हो गई, या इसने ऐसे किया। अधिकांश लोग से हमारे जीवन में दुख आते हैं वो तीन चीज़ों से आते हैं, जो आत्मा है तीन कोशियों में फंसा हुआ है, जो आत्मा है सबसे पहले शरीर में फंसा हुआ है, उसके बाद में एक समाज में फंसा हुआ है, उसके बाद में निसर्ग में फंसा हुआ है। तो ये तीन हम बोल सकते हैं वर्तूल, तीन जो चक्र है उसमें फंसा हुआ है, और ये तीनों चक्रों से आत्मा पे दुख आते हैं। शरीर से जो दुख आते हैं उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, जो समाज से दुख आते हैं उसको आधिभौतिक दुख कहते हैं, जो निसर्ग से दुख आते हैं उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। तो अभी इन तीनों में से कहीं से भी आत्मा पे दुख आ सकते हैं। जब इस तरह से आत्मा पे दुख आते हैं तो फिर वो आत्मा क्या करता है, क्यों आया ये दुख, मुझे बीमारी आ गई, तो बीमारी क्यों आ गई, अरे मैंने कल रात को वो खाया, वो खाना नहीं चाहिए था, ये बात सही है या ये मेरे जीवन में इतनी समस्या, उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे बोला और ये ऐसे बोला, उसके कारण ये ऐसे हो गया, क्यों उसने मेरे बारे में ऐसे बोला। तो हम क्या करते हैं, ये तीन चक्रों में हम खोज ढूंढते हैं। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है, इतना पसीना पसीना आ गया, बहुत असुविधा हो रही है, ये वातावरण बहुत गर्म है यहाँ पे। अभी ये व्यावहारिक स्तर पे हम जांच कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई उस असुविधा हो रही है, दुख हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है। पर वो व्यावहारिक स्तर के परे भी हमें जाना है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वयंभू मनु और नारद मुनि, इन दोनों में मतभेद हो गया था कि प्रियव्रत राजा राज्य करेंगे या त्याग करेंगे। स्वयंभू मनु की इच्छा थी कि वो राज्य करे, नारद मुनि की इच्छा थी वो त्याग कर दे। तो अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी बीच में आ गए, उन्होंने कहा स्वयंभू मनु को कि उन्होंने प्रियव्रत से कहा कि तुम जिम्मेदारी स्वीकार करो राज्य की। तो अभी एक तरह से इस बहस में नारद मुनि हार गए, क्योंकि उनसे जो बुजुर्ग थे उन्होंने किसी और का पक्ष ले लिया। पर नारद मुनि नाराज नहीं हुए। यहाँ पे ऐसे बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद मुनि के अनुमति के साथ स्वयंभू ने राज्य की जिम्मेदारी जो थी वो प्रियव्रत को संभाल दी। इसका मतलब क्या है कि नारद मुनि आसक्त नहीं थे। नारद मुनि वो एक गुरु के रूप में अपनी भूमिका कर रहे थे, गुरु की सेवा है, उनको लगा था मेरी सेवा के अनुसार क्या है कि अभी इसको भौतिक जगत के बंधन में क्यों फंसे प्रियव्रत, दूर रहे उससे। पर जब उन्होंने देखा कि उनके वरिष्ठ बोल रहे हैं कि इसको ये सेवा करनी चाहिए, तो वो मान गए। तो क्या है, ये दुनिया में हम जब कार्य करते हैं तो ये दो चीज़ें करना बड़ा मुश्किल है। एक है टू बी रिस्पॉन्सिबल विदाउट बिकमिंग अटैच्ड, और टू बी डिटैच्ड विदाउट बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना पर आसक्त न होना, ये मुश्किल है, और अनासक्त होना पर गैर जिम्मेदार न होना, तो ये दोनों मुश्किल है बड़ा। तो ये कैसे हो सकता है, अगर अभी गैर जिम्मेदारी और अनासक्ति, इनमें फर्क क्या है? साधारण जैसे फर्क हम समझ सकते हैं, कार्य के पहले जो किया जाता है वो गैर जिम्मेदारी है, कार्य के बाद जो होता है वो अनासक्ति है। मतलब क्या, अगर कोई विद्यार्थी है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है, उसके उसके परीक्षा है, और परीक्षा के पहले पढ़ाई छोड़ देता है, और माता पिता बोलते हैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, मैं अनासक्त हूँ। अभी वो अनासक्ति नहीं है, वो क्या है, गैर जिम्मेदारी है। विद्यार्थी को पढ़ाई करना जरूरी है, उसका कर्तव्य है। तो अभी अभी पढ़ाई करने के बाद अभी उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं, उसका जो परिणाम आता है, वो एक दो तीन महीने लग सकते हैं। अभी उस समय वो हमेशा विचार करते रहेगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मुझे कितने अंक मिलेंगे, पास होगा कि नहीं, पहला होगा कि नहीं। और अभी वैसा विचार करते रहेगा तो क्या होगा, वो अभी वो दो तीन महीनों में जो कार्य कर सकता है वो कर नहीं पाएगा। तो हमारा कार्य करने के बाद उसके बारे में विचार करते रहना, ये आसक्ति है। तो डिटैचमेंट, आसक्ति मतलब क्या, जो कर्तव्य है वो कर दिया, उसके बाद में उसकी चिंता नहीं करनी है। पर वो कार्य करने के पहले ही उसके बारे में विचार ना करना, वो क्या है, वो अनासक्ति नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी है। जब मैं पहले सबसे पहले बार भागवतम क्लास देने लग गया था, 15-20 साल पहले, तो फिर तभी हमको कुछ वरिष्ठ भक्तों ने मार्गदर्शन दिया था, तो कई चीजें बोले थे, कैसे बात कर, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आखिरी बोले थे कृष्ण पे निर्भर रहो, पर फिर ब्रैकेट में लिखा था अपनी तैयारी करने के बाद। अगर कोई प्रवचन करता है, वह प्रवचन कर रहे आते हैं, बोलते कृष्ण पे निर्भर हूं और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, और मैं बैठ गया कोई वो प्रोजेक्ट करके बैठ गया, कुछ भी पता नहीं क्या बोलना है, कुछ तो भी बोलते जा रहे हैं इधर उधर से, तो वो क्या है, वो क्या है, वो अनासक्ति नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी है। भगवान कृष्ण पे निर्भर रहना है मतलब क्या है कि हम जब कार्य करते हैं तो क्या है, हमारा कर्तव्य है, भगवान की इजाज़त है और भगवान की सैंक्शन, भगवान की इजाज़त है, और फिर उसके बाद फल आता है। तो क्या है कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे हाथ में कुछ होता है और हमारे हाथ के परे कुछ होता है। तो जो हमारे हाथ में है उस वो हमें पूरी जिम्मेदारी से करना है और वह हमारी कर्तव्यनिष्ठता है, वह हमारी जिम्मेदारी है। पर जो हमारे हाथ के परे है उसके बारे में विचार करते रहना यह आसक्ति हो जाती है। तो अनासक्ति सही रूप से कैसे आ सकती है? अगर अनासक्ति हमें गैर जिम्मेदारी में नहीं होनी है तो उसके लिए आवश्यकता क्या है कि भगवान से आसक्ति हो जाए। साधारणतः हम क्या सोचते हैं कि दो ही पर्याय है मेरे पास, या तो जो परिस्थिति है वो मेरे नियंत्रण में है या परिस्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है। इधर थिंग्स आर इन कंट्रोल और थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। पर जब हम भक्ति करते हैं, भगवत गीता का तत्व ज्ञान, भागवतम का तत्व ज्ञान समझते हैं तो हम समझते हैं कि इसके परे एक और पर्याय है। क्या पर्याय है? थिंग्स मे नॉट बी इन माई कंट्रोल बट दे आर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज दे आर इन कृष्णास कंट्रोल। चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है पर इसका मतलब ये नहीं है कि यह अनियंत्रित है, यह भगवान के नियंत्रण में है। तो यह जब समझते हैं हम तो फिर क्या करते हैं, हमारी शक्ति में जो है वो हम पूरे सामर्थ्य के साथ करते हैं, पर जो हमारी शक्ति में नहीं है वह हम भगवान पे सौंप देते हैं, उसके बारे में चिंता हम नहीं करते हैं। तो नारद मुनि ने यही किया है, अपनी क्षमता से उन्होंने पूरा प्रयास किया प्रियव्रत को भौतिक जगत में न फंसने के लिए। पर जब उन्होंने देखा कि जो भगवान के प्रतिनिधि है ब्रह्मा जी, उनकी इच्छा है कि प्रियव्रत राज्य करे, तो वे अनासक्त हो गए। तो मेरे हाथ में जो था मैंने कर लिया, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा मैं। तो यह हमारे जीवन में समझना बहुत जरूरी है कि हम कई बार जब चिंता करते हैं, चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं, और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में विचार करने से क्या होता है, हम खुद को बहुत असह्य और खुद को बहुत असुरक्षित समझने लगते हैं। अरे इसने ऐसे किया तो क्या होगा, वहाँ पे वैसे हो गया तो क्या होगा, उधर ये हो गया तो क्या होगा। तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में विचार करते हैं तो उससे क्या होता है, हम असह्य खुद को महसूस करते हैं और खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमें भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए, तो ये केवल एक सांस्कृतिक कार्य नहीं है कि मंदिर में आके दर्शन करो या जप करो, परिक्रमा पे जाओ, ये बहुत सांस्कृतिक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है, पर इससे क्या होना चाहिए, इन सब कार्यों के द्वारा हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़नी चाहिए कि भगवान सही में सब चीज़ों के नियंत्रक है। और जब हम शास्त्र बताते हैं कि हमेशा भगवान का चिंतन करो, सततम कीर्तयन्तो मां तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरतु च मयि मन्मना भव मद्भक्तो अनन्या चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः अनन्या चिंतयन्तो मां। लगभग 50 बार भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि आप मेरा स्मरण हमेशा करने का प्रयास करो। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा मेरा स्मरण करो? क्या इसका मतलब है कि हम विग्रहों के सामने हमेशा खड़े बैठे रहे और विग्रहों को देखते रहे उससे भगवान का स्मरण करें? अर्जुन ने खुद ऐसे नहीं किया था, अर्जुन ने युद्ध किया था। तो भगवान का स्मरण करना इसका मतलब क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम भगवान को हमारे हृदय में देखते हैं और सदैव भगवान का चिंतन करते हैं। हाँ ये भी सही है, पर वैसे कितने लोग कर सकते हैं? हम सबको अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियाँ है, भले ही हम वानप्रस्थ लेते हैं, वृंदावन जैसे धाम में आते हैं, पर यहाँ पे भी अलग अलग सेवाएं होती है और वहाँ पे सेवाओं के लिए हमको विचार करना पड़ता है, ये कैसे करें। तो हमेशा भगवान का स्मरण करना इसका मतलब ये है कि हमारे अंतकरण में यह बात बैठ जाए कि भगवान सब चीज़ों के नियंत्रक है, इसीलिए जो भी हो रहा है मेरे जीवन में मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की योजना से हो रहा है, अभी यहाँ पर मैं सेवा कैसे करूँ। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर समय भगवान का श्याम सुंदर के रूप में हम स्मरण कर सकें, कर सके तो अच्छा है, पर उसका भगवान का स्मरण हमेशा करना मतलब क्या कि हमें समझ आता है कि हमेशा भगवान सब चीज़ों के नियंत्रक हैं, और इसलिए जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें मेरी क्षमता के अनुसार जो भी करना है मैं करूँगा वो, और मेरी क्षमता के परे जो भी है उसके बारे में मैं विचार नहीं करूँगा, उसके बारे में मैं जानता हूँ ये भगवान के नियंत्रण में है। तो इसलिए जितना हमें तत्वज्ञान समझ पाएंगे कि भगवान सब चीज़ों के नियंत्रक हैं, वही कृष्ण जो वृंदावन में बहुत मधुर लीला करते हैं, वही कृष्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक भी है, परम नियंत्रक है वो। और जब हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं तो एक है कि भगवान की मधुरता, जो कैसे भगवान इतनी मधुर लीला करते हैं वृंदावन में, समझना। दूसरा है भगवान की महिमा, भगवान कितने महान हैं। देर इज़ गॉड्स स्वीटनेस एंड देर इज़ गॉड्स ग्रेटनेस, भगवान कितने मधुर है और भगवान कितने महान हैं, तो दोनों समझना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ भगवान की मधुर, भगवान की महानता पे जोर देते हैं तो क्या होता है, नॉलेज ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस ब्रिंग्स सबमिशन, नॉलेज ऑफ गॉड्स स्वीटनेस ब्रिंग्स अफेक्शन। जब भगवान की महिमा को हम जानते हैं तो उसे नम्रता आती है, भगवान इतने महान है, मैं इतना छोटा हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ करूँगा पर भगवान सबके नियंत्रण में, उससे शरणागति का भाव आता है। पर भगवान की मधुरता को जब हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है, स्नेह का भाव आता है, भगवान कितनी मधुर लीलाएं करते हैं भगवान, उससे आकर्षण आता है। पर अभी इन दोनों समय से अगर आप एक ही करते हैं तो समस्या आती है। अगर सिर्फ हम भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं तो कितने महान है भगवान, तो उससे क्या होता है, एक तत्व के रूप में हम समझ सकते हैं कि भगवान सबके नियंत्रक है, पर भगवान को एक व्यक्ति के रूप में हम जान नहीं पाते, उनके प्रति शरणागति आएगी, पर वो शरणागति क्यों आ गई, भगवान इतनी शक्तिशाली है, मैं इतना छोटा हूँ, इसलिए बड़े व्यक्ति को कोई परेशान, बड़े व्यक्ति को क्रोधित नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा भय के कारण उनके शरण जाएंगे। भगवान की मधुरता को जब हम समझते हैं तो स्नेह आता है, भगवान इतने महान है पर क्या है, वो यशोदा माई के साथ कैसी लीलाएं करते हैं कि वो यशोदा माई उनको बांध देती है, यशोदा माई डंडा रखती है तो वो दौड़ते हैं उनसे, राधा रानी जो है वो रुट जाती है तो वो राधा रानी के पैर में गिरते हैं, भगवान कितने मधुर है जब हम समझते हैं तो फिर क्या होता है, उससे भगवान के प्रति स्नेह जागृत होता है। अभी बलराम जयंती आ रही है तो गोपाल चंपू में कृष्ण और बलराम, कृष्ण की लीलाएं बहुत सुंदर रूप से जीव गोस्वामी ने बताई है, और वहाँ पे वे बताते हैं कि कैसे भगवान जहाँ भी जाते हैं, वृंदावन मथुरा द्वारका, हर जगह पे उनके साथ एक व्यक्ति रहता है, वो है बलराम जी। एक और व्यक्ति भी होता है जो है रोहिणी, वो वृंदावन में होती है और फिर वो मथुरा और द्वारका भी आती है, पर वो उनकी इतनी घनिष्ठ नहीं होती, माँ होती है बलराम जी की, कृष्ण की कृष्ण के स्नेह होता है, पर कृष्ण और बलराम का बहुत स्नेह होता है, कृष्ण बलराम साथ में युद्ध भी करते हैं, साथ में गुरुकुल में भी जाते हैं, जब कृष्ण बलराम हमेशा साथ में रहते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो हमेशा एक दूसरे के हृदय को समझते हैं। तो जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं तो एक तरह से तो ये बहुत वीर कार्य करते हैं वो, कि जो ये बड़ा अत्याचारी कंस था उसका वध कर देते हैं, और संसार को खासकर यदुवंश को वो उसके अत्याचारी राज्य से छुटकारा प्रदान कर देते हैं। पर क्या होता है, दूसरी तरह से देखें तो कृष्ण अभी तो छोटे से बालक है, 10-11-12 साल के बालक है, अलग अलग आचार्य थोड़ा अलग अलग उम्र बताते हैं उसकी, तो अभी क्या होता है उस समय, तो बचपन से कृष्ण को यशोदा नंद महाराज ने संभाला है, तो अचानक एक छोटा बालक है वह एक छोटे गांव में रह रहा है अपने माता पिता के साथ, और एक दिन अचानक वो शहर में चला जाता है, और शहर में जाने के बाद उसको बोलते हैं कि अभी ये दोनों तुम्हारे माता पिता है, उनके साथ रहो तुम, और जो पहले तुम्हारे माता पिता है उनके पास जाना भी नहीं, उनसे कुछ बात भी नहीं करना, उनसे संबंध तोड़ दो भी। तो तो ये कृष्ण के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गोपाल चंपू में बताते हैं कि कृष्णा बार बार स्मरण करते हैं कि वृंदावन में ब्रजवासी कैसे है, ओ मेरी याद कर रहे हैं, मैं उनकी याद कर रहा हूँ, मुझे उनके पास जाना है। पर फिर कृष्ण बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता। जब पहले नंद महाराज को बोलते कि आप चले जाओ अभी, क्योंकि ये यदुवंश के लोग कह रहे हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ क्योंकि मैंने कंस का वध किया है। तो बोलते नंद महाराज कहते मैं यहीं पर रह लूँगा, हम सब यहाँ पर आ जाएंगे। बोलते नहीं बाबा, आप यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हम तो गायों के सेवक हैं और हमारे पास इतनी सारी गैया हैं, उनके लिए मथुरा में घास कहाँ मिलेगा। तो बोलते हैं वो तो फिर तुम हम चले जाएंगे पर आप हम आप बीच बीच में आते रहना। बोले कि नहीं, जो मथुरा वासी मुझे आने नहीं देंगे। तो बोले कि हम आएंगे। फिर नंद महाराज बोलते कि नहीं, आप भी नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? बोलते हैं कि अभी मैंने कंस का वध किया है, कंस के और बहुत सारे साथी हैं और ये साथी है वह आक्रमण करेंगे मथुरा पे। तो मैं मथुरा में होऊंगा तो मथुरा का संरक्षण कर सकता हूँ मैं, पर अगर वो वृंदावन पे आक्रमण करेंगे तो मैं मथुरा में होऊंगा तो वृंदावन का संरक्षण नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ये ब्रजवासी, ये मेरे कंस के शत्रु जो है, कंस के मित्र जो है, जो मेरे शत्रु है, उनको कभी ऐसे पता ही नहीं चलना चाहिए कि मुझ में और आप में कोई विशेष संबंध था। अगर उनको लगेगा कि हम में बहुत स्नेह का संबंध है तो क्या है, वो समझेगा कि आप मेरी कमजोरी है और वो आप पे आक्रमण करेंगे, आप पे अत्याचार करेंगे। तो अगर हम ऐसे दिखाएंगे कि मैं सिर्फ क्योंकि कंस राजा था यहाँ पे तो इसीलिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैं वृंदावन में रह रहा था, पर भी वृंदावन छोड़ दिया तो भी ब्रजवासी से कोई संबंध नहीं है, ऐसे अगर हम दिखाएंगे तो फिर क्या होगा, जो भी मथुरा पे आक्रमण करने आएंगे, मुझ पे आक्रमण करने आएंगे, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो है इस कारण से कि ब्रजवासियों का, कई बार हम पूछ सकते हैं कि मथुरा और वृंदावन इतना पास में है तो कृष्ण मथुरा से वृंदावन कभी क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए वो, क्यों? क्योंकि वो सोचे थे कि अगर वो वृंदावन जाएंगे तो क्या होगा, अभी उनके जो शत्रु है वो तो देख रहे हैं ये कृष्ण कहाँ जाते हैं, जासूस तो हर जगह पे होते हैं, क्या जाते हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो देखे क्या, ये कृष्ण का इतना स्नेह ब्रजवासियों से तो ब्रजवासी पे आक्रमण, वृंदावन पे आक्रमण कर देंगे। तो वृंदावन और ब्रजधाम के संरक्षण के लिए भगवान कृष्ण ये त्याग करते हैं कि ब्रजवासियों से संबंध जो है वो छोड़ देते हैं और यह उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार कृष्ण और बलराम वृंदावन की याद करते हैं और वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपने दोनों को अपने आँखों से, आंसुओं से वो नहला देते हैं और वो अपने हृदय की पीड़ा है वो किसी को बता भी नहीं सकते वो, क्योंकि बाकी मथुरा वासियों को बताएंगे तो मथुरा वासियों को पहले से डर लग रहा है कि ये हमारा कृष्ण है, पुनः वृंदावन चले जाएगा तो आएगा नहीं। हम आशा करते हैं कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो भगवत धाम जाएंगे तो हम कभी वापस नहीं आएंगे, यह आशा करते हैं भगवत धाम चले जाएंगे। पर मथुरा वासी को डर लग रहा था यद गत्वा न निवर्तन्ते, अगर कृष्ण वृंदावन चले जाएगा तो कभी वापस ही नहीं आएंगे, तो हम चाहते हैं कृष्ण यहाँ पे रहे। तो मथुरावासी क्या करते थे कि कृष्ण को, मथुरावासी मतलब यदुवंश के जो लोग थे, कृष्ण को वृंदावन के बारे में कुछ भी बात नहीं करते थे और वो कृष्ण वृंदावन के बारे में बात करते थे उनको भी उसको सराहना नहीं करते थे। जैसे कृष्ण और बलराम जी सिर्फ अकेले में बात करते थे और तभी ब्रजवासियों की याद करके वो अश्रु के प्रवाह में खुद को नहलाते थे, एक दूसरे को नहलाते थे। तो ये भगवान का की मधुरता है कि अपने भक्तों की याद में वो रोते हैं पर वो ऐसी पीड़ा भी वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अपने भक्तों का संरक्षण, ब्रजवासी का संरक्षण। इसीलिए वो अगर ब्रजवासी से विरह भी होना चाहे, उससे जरूरी पड़े तो वो भी स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम जब भगवान की मधुरता को समझते हैं तो फिर उससे क्या होता है, उनके प्रति स्नेह जागृत होता है। तो हमें हमारे भक्ति में दोनों प्रकार का श्रवण चाहिए। एक है भगवान की महिमा का श्रवण, जिससे कि भगवान कैसे परम नियंत्रक है उसमें हमें विश्वास हो जाए, और भगवान की मधुरता का श्रवण जिससे कि हमारा हृदय उनके प्रति आकर्षित हो जाए। और ये दोनों जब होता है, भगवान की मधुरता और भगवान की महिमा दोनों का जब श्रवण होता है, तो फिर हम देखें कि हमारी भक्ति में बड़ी तेजी से प्रगति होगी। क्या होगा? हृदय और बुद्धि दोनों से हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे, दोनों के द्वारा हम भगवान के करीब जा पाएंगे। और भगवान के करीब जाना यह जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें क्या भाव से सेवा करनी है? प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि सबसे अच्छी प्रार्थना क्या है, सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना क्या है। तो प्रभुपाद जी बोले थे कि हे कृष्ण, मुझे हमेशा आपकी सेवा करने की शक्ति दो, हमेशा आपकी सेवा करने की शक्ति दो। जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, संपत्ति हो विपत्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य हो बुरा स्वास्थ्य हो, अच्छा वातावरण हो बुरा वातावरण हो, भक्तों के समूह समाज में अच्छे संबंध हो भक्तों के समाज में बुरे संबंध हो, जो भी हो सकता, कुछ भी हो, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, पर हमेशा है भगवान मुझे आपकी सेवा करने की शक्ति दो। और वह शक्ति अगर मिल जाएगी हमें, तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान के पास में रहेंगे और भगवान का आश्रय महसूस कर पाएंगे। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरा आश्रय ग्रहण कर लोगे, तो जो भी विपत्ति आपके जीवन में आएगी, उसके परे मैं आपको ले जाऊंगा, उसके परे मैं आपको ले जाऊंगा। और जब हमारे जीवन में बहुत सी समस्या आती है, ऐसे लगता है यार ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, तब हम उससे हताश हो सकते हैं। तो क्या है, अगर हम इस भौतिक स्तर पे ही देखते रहेंगे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्या हो रहा है, सारा सब कुछ मेरी किस्मत ही फूटी है, ऐसे बोल के हम पूरा हताश हो जाएंगे। पर इस भौतिक स्तर पे देखने की जगह पे हम ऊपर देख सकते हैं, इस भौतिक स्तर के परे भी कुछ है, इसे जो दृश्य चीज जगत में जो हो रहा है वो समझने के लिए अदृश्य क्या है वो देखना है। तो इस दृश्य जगत पे विपत्ति भी हो रही है हमारे जीवन में, तो अदृश्य क्या है, अदृश्य क्या है, भगवान है, भगवान हमारे हित चिंतक है, सुहृदम सर्वभूताना। तो भगवान का आश्रय अगर हम ग्रहण कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, मैं अंतरंग रूप से शांति और शक्ति मिल जाएगी, और जो भी समस्या आएगी उसको हम सामना कर पाएंगे। एक उदाहरण के साथ मैं अंत करता हूँ कि कैसे हमारे भक्त के जीवन में समस्या आती है, पर भगवान उन समस्याओं में भी एक विश अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने अभी होमवर्क नहीं किया है, तो अभी उसकी जो शिक्षिका है, टीचर जो है, वह स्ट्रिक्ट है। तो अभी स्कूल में जाएगा, तो जब उसने होमवर्क नहीं किया है, तो टीचर हाथ आगे करो, वो टीचर मारने वाली है उसको। अभी जो माँ है वो चाहती नहीं है कि शिक्षक अपने बच्चे को सजा मिले, उसको छड़ी से मारा जाए, पर माँ ये भी चाहती है कि ये जो बच्चा है ऐसे गैर जिम्मेदार नहीं रहना चाहिए, होमवर्क अगर बोला था तो करना चाहिए था। तो क्या करती है वो माँ, जब वो बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तो उसके हाथ में एक अच्छा मोटा ग्लो पहना देती है, मोजा जैसे होता है हाथ का मोजा पहना देती है। तो पहन के जब बच्चा जाता है स्कूल में, तो क्या होता है, तो टीचर बोलते होमवर्क किया है तुमने, नहीं, तो फिर हाथ आओ इधर, हाथ आगे करो, हाथ आगे, तो वो छड़ी से मारती है, छड़ी से जब मारती है तो क्या होता है, तो फिर आवाज बड़ा आता है, आवाज तो आता है, पर क्या है, क्योंकि हाथ में वो मोजा है, ग्लो है, तो क्या होता है, कुछ दर्द नहीं होता है। द स्टिक हिट्स बट इट डज नॉट हर्ट, वो लगती तो है पर उससे दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो मोजा है। तो उसी तरह से क्या है, हमारे जीवन में जो टीचर जो है वो माया देवी है, भौतिक जगत है, जो हम है वो बालक के समान है, और कृष्ण हमारे माता के समान है। तो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों, पूर्व कर्मों से, इस जन्म का हो पिछले जन्म का हो, जो कर्म है उससे हमको वो छड़ी मिलने वाली है। पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो हमें एक ग्लो दे देते हैं। वो ग्लो क्या है? उनका स्मरण, उनकी चेतना। जितने हम उनकी चेतना में लग जाते हैं, जितना हम उनका स्मरण करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, उससे भले ही हमें पीड़ा क्यों ना हो रही हो, बाह्य रूप से ऐसे लगता है बड़ी पीड़ा हो रही है, पर अंतरंग रूप से क्या होता है, हमें भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का आश्रय हो रहा है, मिल रहा है, और उस भगवान के आश्रय के कारण क्या होता है, हमें वो पीड़ा उतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि चेतना है वो भगवान में लगी हुई है। कुछ 5-6 साल पहले मैं जुहू मंदिर में सुबह जप कर रहा था, और वहाँ पे कुछ पानी गिर गया था, तो मैं आंखें बंद करके जप कर रहा था, चल रहा था, तो मेरा पैर पानी में फिसल गया और पूरा जो है पूरा गिर गया मैं। ये पहले से पैर में पोलियो था, तो वो जो हड्डी था पहले से कमज़ोर था, तो पूरा ऐसे पैर ऐसा हो गया, तो वहीं पे फ्रैक्चर हो गया। तो तभी बहुत दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ जैसे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। तो मुझे भगवद्गीता से मेरा थोड़ा आकर्षण है, तो तभी एकाएक में भगवद्गीता के श्लोक बोलने लग गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण से ऐसे बोलने लग गया, और ऐसे व्यवहारिक रूप से ऐसे जैसे ही श्लोक बोलने लग गया, जो दर्द था ऐसे चला गया, और श्लोक बोलना बंद कर दिया, पूरा दर्द आ गया, श्लोक बोल रहा था दर्द चला गया। तो अब ये भक्ति के कारण मैं श्लोक नहीं बोल रहा था, ये दर्द से बचने के लिए श्लोक बोल रहा था। पर वो व्यवहारिक रूप से अनुभव था। मेरा एक मित्र जो नास्तिक है, उसने बाद में एक खत लिखा मुझे कि तुम तो भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा के लिए जी रहे हो, और भगवान के मंदिर में भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और भगवान ने तुम्हारा संरक्षण नहीं किया, तुमको फ्रैक्चर हो गया, ऐसे भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो। तो मैंने उसे मेरे वेबसाइट है वहाँ पे उसे एक पत्र लिखा था जवाब में, तो मैंने उसको बताया कि तभी भगवान ने संरक्षण ज़रूर किया। संरक्षण क्या था? वो अंतरंग रूप से भगवान के स्मरण में क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, उसका मुझे एहसास दिलाया। इस दुनिया में हम बड़े ही स्वास्थ्य के साथ भले ही जी ले, फिर भी ये प्रकृति का नियम है, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, मृत्यु तो होने ही वाली है, ये तो प्रकृति के नियम से होने वाला है। पर अगर ये प्रकृति इस जीवन में अगर हमको कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जिससे कि हमें साक्षात्कार होता है कि भगवान के आश्रय में, भगवान के स्मरण में, भगवान की चेतना में कितनी शक्ति है, तो वह जो साक्षात्कार है ये जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यह साक्षात्कार हमें न केवल जीवन भर आश्रय देगा, पर जीवन के अंत में मृत्यु भी जब यह आएगा, हम भगवान का स्मरण करके भगवान वो मृत्यु के दर्द से भी परे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो भगवान हमें जो ग्लो पहनाते हैं, वो ग्लो क्या है? उनका स्मरण। अभी नटखट बालक अगर होता है, वो बोलता है अरे माँ ने ग्लो क्यों पहना है, ये बड़ा मोटा ग्लो है, चाहिए नहीं मुझे, निकाल के फेंक देता है। और फिर स्कूल में जाता है तो क्या होता है, स्कूल में ठक 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 छड़ी मिलती है और दर्द होता है। पर अगर हम भी ऐसे करते हैं, भक्ति भक्ति से क्या होता है, क्या फायदा है, छोड़ दो इस भक्ति को, फिर क्या होता है, ये दुनिया में आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक सब दुख मिलते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि भगवान दुख क्यों दे रहे हैं, भगवान दुख नहीं दे रहे, प्रकृति के नियम से दुख आ रहे हैं, पर भगवान हमें दुख से राहत भी दिला रहे हैं। वो कैसे है? उनके स्मरण में हमें तल्लीन करके। तो जो भी चीज़ें हमें भगवान के स्मरण में तल्लीन करती है, उनमें मग्न करती है, वह भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद अगर हम स्वीकार करते हैं, भगवान के स्मरण में लग जाते हैं, तो हम देखेंगे कि इस दुनिया में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, भगवान के आश्रय के द्वारा हम उसके परे जा सकते हैं। तो सारांश में आज हमने चर्चा की कि किस तरह से जब हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, तो एकाएक भगवान के बारे में विचार नहीं आते हैं। जो ज्ञान होता है, सब ज्ञान भगवान से आता है, पर सब ज्ञान भगवान से शुरू नहीं होता है। हम इस दृश्य जगत को देखते हैं, और इस दृश्य जगत के बारे में सोचते हुए विचार हमारे भगवान के पास जा सकते हैं। तो जैसे मैंने देखा कि न्यूटन, वह दृश्य देखा, फल गिर रहा है, तो उससे अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के तत्व का उसने प्रस्थापित किया, प्रतिपादित किया। उसी तरह से हम इस दुनिया में, ये दुनिया कहाँ से आई है, दिख रही है, ये अदृश्य भगवान है, उसके बारे में सोच सकते हैं। ये दुनिया में जो घट रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, किसके नियंत्रण में हो रहा है, उसके द्वारा हम भगवान के बारे में चिंत समझ सकते हैं। तो दृश्य से अदृश्य की ओर जाना, यह वास्तव में ज्ञान के विकास का लक्षण है, जो अदृश्य के द्वारा हम दृश्य को समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में जब बुरी चीज़ें होती हैं, तो हमने देखा कैसे जो आत्मा है तीन चक्रों में फंसा हुआ है, शरीर, समाज और निसर्ग, इन तीनों से दुख आ सकते हैं। तो अगर हम ये भौतिक स्तर पर ही दुख का हल करने का प्रयास करेंगे तो जिंदगी भर उसी जंग में फंसे रहेंगे हम, और हम चेतना को ऊपर उठाते हैं तो फिर क्या होता है, भगवान के पास जाते हैं। प्रभुपाद जी जो हिप्पी लोग बोल रहे थे कि आप हताश हो गए हो, मानव जीवन का उद्देश्य कि हताश होना, हताश हो जाते हैं तो क्या होता है, भौतिक दृष्टि से हताश हो जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिक हम जांच करेंगे और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। और आध्यात्मिक प्रगति का उद्देश्य क्या है कि हमें मन भगवान में आसक्त करना है। देखा कि कई बार क्या होता है, हम अनासक्ति के नाम पर गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। तो गैर जिम्मेदारी अनासक्ति में फ़र्क क्या है, कार्य करने के पहले हम पूरी क्षमता से कार्य करते हैं तो जिम्मेदारी है, हम हमारी क्षमता से कार्य करते ही नहीं है तो गैर जिम्मेदारी है। जैसे विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता है, पर पढ़ाई कर ली, परीक्षा हो गई, उसके बारे में उसके बारे विचार करते रहना क्या है, वो आसक्ति है। तो जो हमारे हाथ में है वो करना जिम्मेदारी है, जो हमारे हाथ में नहीं है वो भगवान पे छोड़ देना वो अनासक्ति है। इसलिए अनासक्ति वास्तव में कैसे आती है, भगवान से जब आसक्ति होती है तो उससे आती है। और भगवान से आसक्ति मतलब सिर्फ ऐसे मंदिर के विग्रहों के सामने आकर 24 घंटे भगवान के पास देखना, यह एक तरह से भगवान का स्मरण हो सकता है, पर वास्तव में हमको दुनिया में कार्य करना है तो भगवान का स्मरण सदैव करना मतलब क्या, यह समझना कि भगवान हमेशा नियंत्रक है और जो चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं है वह भगवान के नियंत्रण में है और भगवान उनको संभाल लेंगे, यह समझते हैं तो फिर हम जिम्मेदार भी हो सकते हैं और भगवान पर निर्भर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान की महिमा और भगवान की मधुरता दोनों का श्रवण करना है। भगवान की महिमा सुनने से नम्रता आती है, भगवान की मधुरता सुनने से स्नेह आता है। अगर सिर्फ भगवान की महिमा ही सुनते हैं, मधुरता नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे भगवान की सेवा करते हैं पर डर के भाव से करते हैं। सिर्फ भगवान की मधुरता सुनते हैं, महिमा नहीं सुनते हैं, तो हम भक्ति करते हैं भावुकता के भाव पे करते हैं, भावुकता के स्तर पे करते हैं, तो समस्या आती है, बोलते हैं अरे भगवान मेरे मत क्यों नहीं कर रहे। पर दोनों साथ में होता है तो फिर क्या होता है, जब जीवन में जी रहे हैं तो हम जो भगवान के प्रति स्नेह है उसका भी आश्रय ग्रहण करते हैं। जब मैं बलराम जी की लीला बताई कैसे कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन के स्मरण में रोते थे, तो ये भगवान की मधुरता है। तो हमारे जीवन में समस्या आती है तो मधुरता और महिमा दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारी चेतना को ऊपर उठा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना, प्रभुपाद जी सर्वोत्कृष्ट क्या बोले कि हमेशा मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो, शक्ति दो मुझे, सेवा करने की शक्ति दो। तो जब समस्या आती है हमारे जीवन में तो कैसे है, हमारे ही पूर्वकर्म का फल मिल रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया है तो टीचर छड़ी मार रही है, पर माँ जो है उसको एक मोजा ग्लो पहना देती है, तो वो जो ग्लो है हमारे लिए वो क्या है, भगवान का स्मरण है। तो भगवान को ये पूछना कि ये समस्या क्यों नहीं जा रही है, समस्या क्यों नहीं हटा रहे हो आप, वह पूछने की जगह पे क्या, भगवान के स्मरण में लग जाते हैं। जितना हम भगवान के स्मरण में लग जाएंगे तो समस्या आ भी सकती है, जा भी सकती है, पर भगवान के स्मरण अगर हमें कैसे समस्या से ऊपर उठाता है, समस्या हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, इसका साक्षात्कार होगा तो यह जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। क्योंकि हमारे सारे समस्या हम बड़े ही हल कर लेंगे, मृत्यु की बड़ी समस्या आ जाएगी तब क्या हल करने वाले हैं, तभी अगर हम भगवान के समय लीन हो सकते हैं, तल्लीन हो सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा प्राप्ति है। जब मेरे मित्र ने पूछा मुझे कि मंदिर में ही भगवान ने आपका संरक्षण कैसे नहीं क्यों नहीं किया, तो संरक्षण किया, पूर्व कर जो भी कारण से एक्सीडेंट तो हो गया, वो फ्रैक्चर तो हो गया, पर भगवान ने चेतना के स्तर पर आश्रय दे दिया है। तो चेतना के स्तर पर आश्रय हम सब प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के सानिध्य को अभी भी महसूस कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे इस तरह से जीवन रहेंगे तो ज़रूर हम जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद की।